करना चाहिए, अपना मस्तक गिरिराज जी पर लगा करके और उनको प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना आप लोग सब करें।
सारे राधे
लक्ष्मण चुप करो,
लक्ष्मण करो, लक्ष्मण करो
करके और आगे हम लोग चले सुरभि कुंड पर।
चलो
करो चलो, ये सुरभि कुंड कहलाता है। वेर वी हैव सैट देयर, कहार ललिता जी को दे दिया और अपनी अंगूठी भी खोल करके उनको दे दी। इस समय श्रीमती राधिका जी निकली और इतनी सुंदर रूप से नृत्य करती हुई सप्तम सूर से भी आगे ले गई और ला करके ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि कृष्ण अब देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं, तो उन्होंने अपना हृदय दे दिया उनको। इतना सुंदर श्रीमती राधिका जी ने कीर्तन और उनको ऐसा समझ पड़ा ये साधु साधु शब्द तो हमने ललिता विशाखा को ही दे दिया, अब इनके लिए नया कौन सा शब्द ले आऊं जिनके प्रति मैं आभारी रहूं, तो उनको कोई शब्द ही खोजने में नहीं मिला। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी गलबहियां राधा जी के गले में डाल करके उनसे प्रेम की भिक्षा मांगने लग गई। वो सब स्थलियां अंडरस्टैंड, एट फर्स्ट कृष्ण सैंग एंड गोपी जोस को इंद्र ने जब कृष्ण के चरणों में अपराध किया, 7 दिनों तक वर्षा किया, ब्रज से उनके अंग टुकड़े टुकड़े कर देने की चेष्टा की, तो गिरिराज जी को कुछ मालूम नहीं हुआ, वो आनंद में भर रहे हैं और उनको खुजलाहट सी लग रही थी, मानो कोई हमारे अंगों को खुजला रहा है, क्योंकि कृष्ण को धारण करके वो प्रमत्त हो रहे हैं, कृष्ण की मनोहर मनोहर लीलाओं को दर्शन करते हैं। इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई और कृष्ण के सामने आने में लज्जित हो गए, नहीं आ सके, तो अपनी मैया के पास में गए सुरभि जी के यहाँ। बोले ये गायों का आदर करते हैं कृष्ण, इसलिए तुम हमारे साथ में चलो और कृष्ण से हम क्षमा मांगेंगे। इसलिए गैया को लेकर के सुरभि जी को यहाँ पर पधारे और उनके चरणों में प्रणत हुए, किंतु कृष्ण ने उनके तरफ में देखा नहीं, क्षमा नहीं किया, तो ये सुरभि जी उनके चरणों में प्रार्थना कर दी, अरे मैं तो तेरी मैया हूँ, ये हमारे शरणागत हुआ इसलिए तू इसको क्षमा कर दे, हमारा दूध खाया है तो इसको क्षमा कर दे। बार बार कहने से क्षमा तो कर दिया किंतु अंतर से, इसलिए जब तब वो चले गए नवद्वीप में जहाँ महाप्रभु जी आविर्भूत होंगे और वहाँ सुरभि कुंज है, गोत्रम कुंज है, वहाँ पर आकर के तपस्या करते 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 तो महाप्रभु जी को प्रसन्न किया। महाप्रभु जी कौन है, कृष्ण ही राधा जी के बीच है, जैसे वहां पर उनको प्रसन्न। अभी हम सुरभि कुंड में आए, जिसका जो अपराध रहता है सब अपराधों को ये दूर कर देते हैं, मैया है ना किसी का अपराध नहीं लेते, इसलिए कृष्ण के चरणों में, गिरिराज के चरणों में, भक्ति के चरणों में, नाम के चरणों में, संतों के चरणों में यदि कोई अपराध हो तो इसलिए हमारे नाम में करने से हृदय द्रवित नहीं होता, पुलकित नहीं होता है, आंखों में आंसू नहीं आते हैं कृष्ण के नाम लेने से, क्योंकि अपराध हमारा चित्त एकदम कठोर हो चुका है, इसलिए सुरभि के पास में आना है। मैया तू तो कृष्ण की मैया है, हमारे अपराध हैं, हमारी ग्लानी है, हमारे अनर्थ हैं, सबको आप कृपा करके क्षमा करके कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में हमारी एकांतिक भक्ति प्रदान कीजिए, इसलिए यहाँ पर आए हैं। आप लोग सभी लोग इस कुंड से ऐसे ही प्रार्थना करेंगे दीन ही होकर के, जो कृष्ण की लीलाएं हमारे हृदय में स्फूर्ति हो और उनके प्रति हमारी थोड़ी सी भी भक्ति की लालसा जब उठे तो हमारी परिक्रमा करनी सार्थक हो जाएगा। अभी हम लोग आप लोगों का कष्ट देख रहे हैं कि आज तो 10 बज गया, आप लोगों के मुख में अन्नदाना नहीं गया, गिरिराज जी ने भेज दिया कि जाओ ये सब भक्त लोग हैं बड़े कष्ट करके चल रहे हैं, इनको यहाँ पर थोड़ा सा जलपान कराने की व्यवस्था करा दो। तो भक्त लोग मथुरा से आए हुए हैं और वो लोग कुछ जलपान की व्यवस्था करते हैं। संक्षेप में आपको जो हाथ में मिल जाए, हाथ ऐसे लंबे से पसार करके और हो हल्ला मत करेंगे, जो जहाँ पर बैठा है वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। आप लोगों के पास में स्वयं प्रसाद आ जाए, जब मथुरा से यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्यों नहीं आ जाएगा, इनमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से भोग दे करके और सब ले आओ, 4-5 ब्रह्मचारी लोग लग जाओ, आधे आदमी घर में दे दो, आधे आदमी चले जाओ। यहाँ पर यहाँ का महात्मा श्रवण किया, दो एक शब्द और मैं बतलाना चाहता हूँ। ये उद्धव कुंड है, नंदगांव में उद्धव क्यारी है, यहाँ पर की गोपियों से उद्धव का मिलन हुआ था। वो उद्धव क्यारी नंदगांव में, उद्धव जी जब यहाँ आए तो उसका वर्णन हमारे श्रीमान शिवानंद जी ने किया। ये उद्धव का गांव की, नंदगांव की ये वार्ताएं हैं। गोपियां उनके विरह में तड़प रही थी। नंद बाबा को ही वो सांत्वना नहीं दे सके तो फिर गोपियों को क्या वो सांत्वना देंगे? उनको सांत्वना नहीं मिली। कृष्ण ने कहा था जो देखो मैं जो कह रहा हूं वही कहना, इसको कहते हैं संदेश। अपनी बात तनिक भी मत लगाना, नहीं तो गोपियों का विरह और बढ़ जाएगा, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही कहना। किंतु एक बड़ी विचित्र बात हुई, कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया जाए यही बात ठीक कहना। उद्धव जी उसका अर्थ एक समझे ने? और गोपियों से वह संदेश दिया तो गोपियों ने उसको दूसरे रूप में समझा। और कृष्ण ने किस भावना से कहा था? कृष्ण अपनी भावना से कहे थे, उद्धव जी ने अपने मन की भावना से उसको सुनाया किंतु उसका अर्थ दूसरा लिया, और गोपियों ने जब सुना तो उसका एक और अर्थ दिया। इसलिए उत्तर संदेश के तीन अर्थ हैं। हमारे गोस्याने में ये तीनों अर्थों का वहां पर विवेचन किया है। तो उद्धव जी वहां पर समझाने की चेष्टा किया और गोपियों की भावना को देख करके वो चमत्कृत रह गए। कृष्ण ने इसीलिए भेजा था, ये बतलाया कि जिस पाठशाला में मैंने प्रेम सीखा, प्रेम की परिभाषा देखी और प्रेम क्या होता है उसको मैंने सीखा जिस पाठशाला में, उसी पाठशाला में उद्धव को पहले भक्ति करूं और उस पाठशाला में ये प्रेम पढ़े और प्रेम में पास हो करके फिर हमारे यहाँ आए, वो पाठशाला कौन है? गोपियों की पाठशाला। गोपियों ने पाठशाला प्रेम की खोल रखी है और कृष्ण जैसे छात्र उसमें पढ़ते हैं, कृष्ण ने देखा जैसे बहुत अच्छी पाठशाला है, मैं उद्धव को वहीं पर भर्ती करूं। इसलिए उद्धव को वहां पर उन्होंने भर्ती किया है। पढ़ लिख करके प्रेम की परिभाषा, प्रेम समझ करके तब आएगा, तब उसे बातचीत करेंगे हम। अभी हमारे जैसे बातचीत करने के लिए कोई यहाँ नहीं है, इसलिए उद्धव जी को भेजा, जाओ हमारा गुरु भाई होकर के आओ, गोपियों से प्रेम की दीक्षा लो, शिक्षा लो और तब प्रेम समझना। जब प्रेम किसको कहते हैं? अभी तुम प्रेम कुछ नहीं समझता है, अभी तो तुम तत्व ज्ञान समझता है। तत्व ज्ञान जहाँ समाप्त होगा उसके बाद में प्रेम की पाठशाला आरंभ होती है, तो जाओ। तो वहां पर थे, वहां पर कुछ दिन पढ़ा। कृष्ण का एक एक संदेश देते थे। कृष्ण ने ये कहा, जाकर के कहना कि मैं तो परम परमात्मा हूं और परमात्मा से ये विश्व निकला है, तो तुम भी उन्हीं से निकली हो, अलग से तो नहीं। मिट्टी से घड़ा होता है तो मिट्टी, घड़ा में मिट्टी का अभाव नहीं होता, घड़ा ही तो मिट्टी का बना है, इसलिए मिट्टी उसमें निकाल दिया जाए तो घड़ा क्या रहेगा। तो तुम लोग तो हमेशा निकली हो, तो हमारा तुम्हारा वियोग कैसा? मैं तो तुम्हारे रग रग में, रोम रोम में, हृदय में, अंदर में, बाहर में, सर्वत्र वियोग नहीं है, विशेष करके सर्वात्मना वियोग नहीं है, कुछ कुछ वियोग है, ये बात ठीक है। क्यों? बाहर से वियोग है किंतु अंदर से, मैं बाहर से थोड़ा सा यहाँ आया हूँ किंतु भीतर से मैं संपूर्ण रूप से। और एक बात कहना उद्धव, गोपियों ने कहा अरे वो तुम्हारा कृष्ण जो है वो कब से ब्रह्मा और परमात्मा और भगवान हो गया? हम तो उसको बच्चे से जानती है ना, बच्चे के साथ में खेली हुई, झूठा नंबर एक, मक्कार नंबर एक, चीटर नंबर एक, यहाँ तक कि लंपट खाने में भी उनको कुछ उनका मुख नहीं रुका, माँ लंपट, बात बात पे क्रोध करता है बचपन से ही। क्रोध से अपनी मैया की, जबकि वो अढ़ाई वर्ष का था, तो मैया की हड़िया तोड़ दी, लोहे से तोड़ दिया नीचे से। ब्रह्म होकर के कहीं रोता है, यशोदा ने लठिया उठाई मारू, दूत बोलता है और ये हड़िया तोड़ दिया, बांध तोड़ दिया, रोने लग गया। एक हाथ पकड़ लिया, गंगा और यमुना जी निकल रही हैं यहाँ से, काजल में सिद्ध निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ से बह रहा है, सिसक सिसक करके रो रहे हैं। अरे ब्रह्म का ही रोता है, किसको डर है ब्रह्म का? ब्रह्म का नाम लेकर तो भाव सागर जमतम सब पार कर जाते हैं, तो ये ब्रह्म से कब हुआ? मक्खन और मिश्री देने में विलम्ब हो गई थोड़ी सी, तो ये रोता है। और विवाह करने के लिए, जब बड़ा हो गया तो विवाह करने के लिए क्या करता है? ब्रज में सर्वत्र मैया से कहता है, मैया मेरा ब्याह करा दे, पतली सी गोरी सी हमसे छोटी बहु घर में ला दे, हमसे लड़ाई झगड़ा ना करे, और मैं गैया चरा करके आऊं तो हमारा पैर भी दबा दिया करे, और परोस करके भर भर थाली में हमें, और मैं जब रूठ जाऊं तो हमें मना भी ले, ऐसी हमको बहुत चाहिए। तो ये ब्रज में चारों तरफ में घूमता है और कोई से विवाह नहीं करते, यही ब्रह्म है। झूठ बोलना ये ब्रह्म का लक्षण है, रोना ये ब्रह्म का लक्षण है। हम लोग के बिना प्रेम के वो रह नहीं सकता, ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म तो निर्विकार निर्विशेष निरंजन अनादि, ये होता है ब्रह्म। ये ब्रह्म कहाँ से हो गया, परमात्मा कहाँ से हो गया? उद्धव अपने भावना से कृष्ण के संदेश को कहते हैं और गोपियां उनका खंडन कर देती हैं, कहते ये ब्रह्म ट्रह्म पूछ रहे। फिर एक झोली से निकालते हैं, उनकी झोली भली हुई है संदेशों से, एक एक जब उनको पसंद नहीं होता है उसको रख देते, अच्छा देखो कृष्ण ने ये संदेश दिया, जाओ। उद्धव कहना रास जब हो रहा था तो मैं, इन्होंने देखा जी अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान में छोड़े था। अच्छा पूछो गोपियों से, जो घरों में बंद किवाड़ में उनके पतियों ने बंद कर दिया और लठिया लेकर के दरवाजे पर खड़े हो गए, उनके पति जाएंगे तो टांग तोड़ देंगे, खबरदार मत निकलना। और उस समय में बिरह में उनकी क्या दशा हुई, बिरह की ज्वाला से उनका हृदय जलने लगा, उनका जितना अशुभ था वो बिरह से जल करके खत्म हो गया। मैं उस समय में झट दौड़ करके आया, अरे ये तो मर रही है, जो ही मैं आया उन्होंने आंखों के माध्यम से हमको अपने हृदय में और भरपूर आलिंगन किया। उस समय में हमारे उनके गोपियों के जो मंगल था वो भी क्षीण हो गया। अमंगल और मंगल दोनों होने के बाद में तब कृष्ण से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। पूछना जो मैं आया था कि नहीं, तो वो जो गोपियां वहां पर जिनके पतियों ने बंद कर दिया था, हाँ हाँ ये बात ठीक है, इसलिए मैं ब्रज में आता हूँ। द्वारका में मैं केवल आंशिक रूप में हूँ, मैं संपूर्ण रूप से वृंदावन में, वृंदावनम प्रसज्य पाद अभिकम नगच्छ, वो कभी छोड़ करके जाते नहीं है, मैं छोड़ करके कभी नहीं जाता, मैं तो उन्हीं के वहां पर, इसलिए कि गोपियों की चरण से धूलि उड़े और मैं उसमें स्नान करता जाऊं, उनके पीछे पीछे चलता हूं। इसलिए उनके साथ में हमारा वियोग कैसे, मैं नित नित आता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, उनकी सांत्वना देता हूं, उनके गले में अपने कंठहार लगा देता हूं और फिर मैं चला जाता हूं। ये समझते कि मैंने ये स्वप्न देखा, कभी कभी स्फूर्ति होती है किंतु वास्तव में नहीं, मैं खुद आ जाता हूं, मैं इनको छोड़ करके, जिन्होंने हमारे लिए पति पुत्र भाई बंधु गुरुजन सबको छोड़ा, धर्म अधर्म सब छोड़ दिया, लोक लज्जा छोड़ दिया, भला उनको मैं कभी छोड़ सकता हूँ? गोपियों को नहीं छोड़ सकता, विश्व को छोड़ सकता है इन लोगों के लिए, किंतु इनको कभी नहीं छोड़ सकता। उद्धव जी एक एक निकाल रहे हैं और एक एक संदेश दे रहे हैं, करते करते यहाँ पर भी तीन चार महीने रहे। अंत में उन्होंने प्रार्थना की, आकाम हो चरण काम हमेशा, गोपियों की चरण धूलि में अभिषिक्त होने के लिए मैं वृंदावन में कहीं लता गुल्म घास हो जाता, और गोपियां जब अभिसार के लिए चलती हैं तो भूले भटके भी अपने चरणों की धूलि हमारे सिर पर रखते, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए उद्धव ने ये क्षेत्र चुना, काशी में राधा को, ये स्थान है कुसुम सरोवर कहलाता है, ये कुसुम वन है, कुसुम वन है, कुसुम उपवन, बेली चमेली जुई कदम्ब इत्यादि मालती यहाँ पर सब समय खिली जाती थी, अभी भी खिली हो किंतु हम अपने प्रेम नेत्र से इसको देख नहीं पाते। खान तो वही है, कोई अदल बदल नहीं, किंतु हमारे नेत्र ऐसे और साधन नहीं जो देख सके। उधर यही पास में ये कराते ही एक श्याम कुटी, इसके पीछे में है कुसुम सरोवर, जहाँ पर की कुसुम चयन करने का स्थान है, जहाँ पर कृष्ण और गोपियां चयन करती थी और परस्पर प्रेम कलह करती थी। वो स्थान में उन्होंने सोचा जाए यहीं पर हम रहूं, इसलिए यहीं पर घास बन करके रह गए। कालांतर में जब कृष्ण की लीला अप्रकट हो गई और उद्धव जी वहां से चल करके और चले गए वहां बद्रीनाथ, फिर वहां से लौट करके आए या जाते समय यहां आकर के बहुत दिनों तक रहे। उस समय में उद्धव जी घाट बन करके यहां पर हैं और एक शरीर से अपना उस फूल शरीर से वहां पर हैं और मन आत्मा प्राण सब प्रकार से यहां पर हैं, घाट बन करके बने हुए हैं। गोपियां वहां पर आई, वहां पर आकर के पूछा जमुना जी से, अरे तू तो बड़ी प्रसन्न दिख रही है, हम लोग तो बड़ी कृष्ण के दिरा में तड़प रही हैं। उन्होंने कहा बड़े में मत तड़पो, यहाँ पर साक्षात रूप से राधा जी गोपियां और सब कृष्ण यहाँ पर हैं। कभी कैसे हैं? अच्छा तो देखो, तो जाकर तो वहां पर कीर्तन करो तुम लोग। सब लोगों ने मिल करके बजनाभ इत्यादि सब मिल करके यहाँ पर कीर्तन किया। इंद्र प्रभृति देवता लोग आए, अर्जुन भी आ गए, मृदंग बजाने लगे, कोई कुछ डंप बजाने लगे और सभी लोग हाथ उठा करके कीर्तन करने लगे राधा कृष्ण का। उसी समय देखा मुस्कुराते उद्धव जी घास के उस उपवन से निकल करके एकदम प्रकट हो गए सबके सामने, देख करके बड़ा उन लोगों में उल्लास हुआ। इतने में देखा तो उल्लास और बढ़ गया और प्रेम बढ़ गया, तो युग भी नाचने कूदने लगे। इतने में कृष्ण समस्त गोपियों के साथ में यहाँ पर प्रकट होकर के रास जैसा यहाँ पर नित्य और कृष्ण ने एकदम प्रकट हो, जो जो यहाँ पर थे सब लोगों ने देखा, देख करके सभी मुग्ध हो गए। इस थोड़ी देर के बाद ही में लीला वो समाप्त हो गई। उद्धव जी फिर घाट बन करके चले गए और बज्रनाभ और सब जो लोग थे वहां पर फिर देखते रह गए। तो उद्धव जी यहाँ पर रहते हैं, ये उद्धव कुंड है। गोपियों को उन्होंने सांत्वना दी थी प्रक्रांत रूप में, 25 समय से जब होगा हम लोग इसका वर्णन करेंगे। बहुत ही व्यूहात्मक ये सब बातें हैं। आज अभी अत्यंत विलंब और देर हो गई है, आज उद्धव जी के चरणों में हम लोग यहाँ पर प्रणाम करें, गिरिराज गोवर्धन के चरणों में और इस कुंड के पानी लेकर के और अपने सिरों पर धारण करके उनसे प्रार्थना करें जो वैसा भाव हम लोग की भी अनुभूति का विषय हो, उनके प्रेम के प्रति हमारा लोभ इतना भी हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अनंत कोटि काल से हम लोग नरक में पड़े हुए हैं और आ जा रहे हैं, इसलिए उद्धव जी कृपा करें, यह ब्रजभूमि दया करें, यहाँ की धूलि कणाएं जो चिन्मय है वो हमारे ऊपर में दया करें, जिससे हम उनकी कृपा को समझ सके और इसके प्रति भजन करने की हमारे हृदय में भी भावना जग सके, ये जीवन तब प्राप्त हो जाएगा। इनके चरण में प्रार्थना करके अब धीरे 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 हम लोग अपने पड़ाव पर पहुंचेंगे। वहां पर सभी लोग आप लोग प्रसाद पा करके फिर 3 बजे वहां से निकलेंगे और बाकी को परिक्रमा करते हुए अपनी परिक्रमा हम लोग गोवर्धन में वहां पर समाप्त। गौर प्रमानंद उद्धव महाराज की, भक्त उद्धव की, उद्धव कुंड की, गिरिराज धरण की, गौर प्रमानंद, जय जय श्री राधे।
करते राधा कुंड के किनारे पहुंच गए हैं, पासी में राधा कुंड जी सामने हैं। हम लोग गिरिराजधारी के गिरिराज जी के पास में उपस्थित हुए हैं। ये गिरिराज जी यहाँ के नहीं हैं, इस भूतल में मत्त लोक के नहीं है कोई चीज, ये गोलोक वृंदावन में नित्य रहते हैं, जहाँ पर कि कृष्ण की अप्रकट लीलाएं सब समय वहां पर चलती रहती हैं। एक बार कृष्ण जी बड़े उतावले हो रहे हैं, राधा जी ने उनसे पूछा, श्रीमती जी ने, किशोरी जी ने, बड़े उतावले हो रहे हैं क्यों? कहीं जाने की तैयारी हो रही है? कहे हाँ, कहीं जाने की तैयारी हो रही है। कहा? मुझे भूलोक में जाना है, भक्तों पर हमको कृपा करना है, इसलिए वहां जाऊंगी। तो आप चले जाएंगे, मैं नहीं क्या जाऊंगी, आप अकेले जाएंगे, तो आपकी इच्छा हो तो आप भी चले। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। यदि ब्रज का 84 कोस का मंडल यदि नीचे उतरेगा उसके साथ में आएंगे, जहाँ जमुना नहीं है, गिरिराज गोवर्धन नहीं है, यहाँ पर ब्रजवासी नहीं है, गायें नहीं है, जहाँ पर की ये सब चीजें नहीं है, जहाँ पर यशोदा मैया नहीं है, नंद बाबा नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं इनको सबको लेकर के चलो। तो 84 कोस ब्रजमंडल वहां का नित्य गोलोक वृंदावन, वहां से सबको लेकर के कृष्ण यहाँ पर पधारे। तो अपने आए तो नंद बाबा के पुत्र रूप में दिखलाया गया, जैसे वो पुत्र के रूप में आए, किंतु वहां पर नित्य रूप में वहां रहते हैं। तो ये गोवर्धन जी कैसे आए? गोवर्धन जी ऐसे आए, वो द्रोणाचल के पुत्र होकर के आए। द्रोणाचल भारत के उत्तर और पश्चिम तरफ में जो हिमालय है, हिमालय में एक द्रोणाचल वहां पर पर्वत है, उनके पुत्र के रूप में आए। उनमें भी संतति होती है, जैसे पेड़ों में भी संतानें होती हैं, पहाड़ों में भी वैसे संतति होती है, नदियों में भी संतति होती है, पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं मनुष्य के समान, उनमें भी पुत्र के पुत्र के पुत्र के रूप में इस प्रकार से चलता है। तो भी उनके पुत्र के रूप में बड़े सलोने सांवले रंग के, और उनमें चारों तरफ में वृक्षावलियां, झरने, ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पर अभी, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, गोविंद कुंड, ऐरावत कुंड, सुरभि कुंड, कुसुम सरोवर इत्यादि, राधा कुंड, श्याम कुंड सब देख रहे हैं, वहीं से सब पधारे, यहाँ का नहीं है। तो गिरिराज जी भी वहीं के हैं, वहां से यहाँ पर पधारे। तो काशी का एक पंडित थे, पुलस्त्य ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि काशी में पहाड़ पर्वत नहीं है, हरियाली नहीं है, इसलिए हम जाएं गिरिराज जी से, वहां से कह करके अब द्रोणाचल के पुत्र को ले आए। तो गए, उनसे मांगा, तो पहले तो नहीं दे रहे थे अपने पुत्र को, पीछे से वो स्वीकार किया, नहीं तो ये ऋषि हमको अभी संपात कर देगा, हम जल जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे बच्चे से बातचीत कर लीजिए, यदि जाने के लिए तैयार है तो जाएगा। उन्होंने गिरिराज जी से निवेदन किया कि बेटा चलो हमारे साथ में, वहाँ की भूमि मरुभूमि जैसे, काशी जैसे लगती है, कोई वन उपप्रदेश और पत्थर इत्यादि नहीं है, पहाड़ नहीं है। मैंने कहा मैं चलूंगा, किंतु एक शर्त है, अपवित्र होकर के हमको कोई न ले चले, हमको अपने हाथों पर लेकर के चले, और अपवित्र होगा तो मैं वहीं उतर करके रह जाऊंगा, या बीच में कहीं हमको रख दिया तो मैं उठूंगा नहीं। लेकर के चले ऋषि, स्नान करके पवित्र हो करके, अनिक संध्या इत्यादि गायत्री मंत्र से के द्वारा पवित्र होकर के लेकर के चले। जब आकाश मार्ग से यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ की पवित्र भूमि को देखा और सोचा कि ये तो कृष्ण की क्रीड़ा भूमि है, कृष्ण यहाँ पर कुछ दिनों में ही अवतरित होंगे, मैं इस स्थान को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इसलिए उनकी इच्छा से इनको खूब जोर से लघु शंका हुई, ऐसे जोर से लगी पेशाब कि मानो कपड़े में हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से वहां से उतर करके आए और गिरिराज जी को रख करके यहीं पर लोग शंका करने लगे। करते 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 कितने घंटे बीत गए, इधर हो गई शाम। फिर पवित्र होकर के, स्नान करके पवित्र होकर के उनको कहा जी आप चलिए हमारे साथ में, हमारे हाथों पर आ जाइए। उन्होंने कहा जी अब मैं नहीं चलूंगा, मैंने कहा था ना जो मैं यदि बीच में कोई रख देगा तो मैं नहीं चलूंगा, और मैं स्थान को छोड़ करके नहीं जाऊं। तुम नहीं चलोगे, मैं ऋषि हूँ, अभी आप संपात कर दूंगा, तो आपकी जो इच्छा हो मैं इस भूमि को छोड़ करके अब कहीं नहीं जाऊंगा। लोभ ये था कि कृष्ण की भूमि में हम जा करके कृष्ण की लीलाओं का हम दर्शन करेंगे, कृष्ण के ये परम भक्त भी हैं और भगवत स्वरूप भी हैं, इसलिए वो नहीं गए। उन्होंने क्रोधित होकर के कहा जाओ आज से तुम क्षण क्षण में थोड़ा 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 क्षीण होता चला जाए। कलयुग के अंत में तुम एकदम पूरा रूप से क्षीण हो जाएगा और पृथ्वी के अंदर में चला जाएगा, तुम्हारा कहीं भी नाम निशाना उस समय नहीं रह जाए। एवं अस्तु तथा युवा हो जाए। हम तो एक दिन का जीवित रहना, एक पल का जीवित रहना वो सार्थक है यदि भगवान के भजन में लग गया, नहीं तो वृक्ष और पहाड़ों की तरफ में जीवन लाभ करके भी यदि भगवत भजन नहीं हुआ तो उनके जीवन को धिक्कार है। आत्मज्ञान कुछ होना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें आत्मा हूँ, वो भगवान का अंश, मैं भगवान का दास हूँ। इस जीवन में इस चीज को रियलाइज करना है हमें। ये मनुष्य जीवन सार्थक है। धन कमाना एक मैल है। आज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी का वो धन अरबों खरबों स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है? धन किसी को सुख और शांति नहीं दे सकता है। गिरिराज जी के चरणों की छाया उसे सुख और शांति दे सकती है। इसलिए गिरिराज जी लीला का दर्शन करने के लिए यहीं पर रह गए, तब से ये हटे नहीं। एक और दूसरी भी लीला, रामचंद्र जी लंका के जाने के लिए रामेश्वर के निकट में पुल बांध रहे थे। बंदर सब पत्थरों को ला ला रहे थे और नल नील उसको राम नाम कहते हुए उच्चारण करते हुए स्पर्श करते थे और वो तैरने लगते थे। पुल प्राय बंद चुका था, थोड़ा सा बाकी था। बंदर लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ पूर्वी घाटी से, पश्चिमी घाटी से, विंध्याचल से और हिमालय से लाखों कोटि कोटि बंदर, और वहीं से उछल जाते और चले जाते और वहीं से उठा करके लेकर के चले आते। जब वो पुल बन चुका तो रामचंद्र जी ने आदेश दिया, बंदरों को कह दो, भालुओं को कह दो, जो जहां से पत्थर ला रहा था वहीं पर बंद कर दे, अब जरूरत नहीं है, बंद गया है पुल। उसमें हनुमान जी वही पत्थर हिमालय से इसको ला रहे थे गिरिराज जी को, और लाते लाते जब यहाँ आए तो बंदरों ने आकर के कहा अब जरूरत नहीं, अब यहीं पर जो जहाँ है वहीं पर रख दो। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न होकर के वहीं उतर करके यहीं पर रह गए, तब से कहीं नहीं गए। कृष्ण लीला में कृष्ण की अधिकांश लीलाएं गिरिराज गोवर्धन में हुई। यहीं पर गोवर्धन की पूजा करने के लिए अपने पिताजी को कहा, इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, इंद्र बरसाता पानी नहीं बरसाता है, ये गिरिराज गोवर्धन है ना, गोवर्धन, गो का वर्धन करते हैं। गो माने क्या? गोप, गोपी, गोप, गोवत्स, गाभी, इंद्रियां, वेद, ज्ञान माने गो होता है। इस सब का वर्धन करने वाले गिरिराज गोवर्धन है। इसी से पानी बरसता है, इन्हीं के कृपा से, इन्हीं की कृपा से यहाँ पर घासें होती हैं और घासों में गाय चरती हैं और उसे दूध निकलता, उसे मक्खन और ये सब चीज की नदी दूध की यहाँ पर बहती थी। आज गोवंश यहाँ पर कम है, आजकल उसके बदले में भैंसे यहाँ पर हैं, लोग भैंसे पालन करते हैं। अब उनकी बुद्धि वैसी सूक्ष्म नहीं रही, भैंस का दूध होता है तामसी और मोटी बुद्धि वाला, इसलिए मोटी बुद्धि वाले लोग भगवान का भजन नहीं करते। उनके घर में हम हजार दिन भी जाएं, सब समझ आए, किंतु मालूम होता है कि भैंस पालन करने वाले हैं, भैंस रखते हैं और भैंस का दूध पीते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती, वो पकड़ नहीं पाते कि भगवान का भजन करना कैसा चीज है। इसलिए गाय पालिए, बुद्धि सूक्ष्म हो, और गोपालक जो कृष्ण है उनके चरणों में प्रीति हो। ये गिरिराज गोवर्धन जी गोपालों की रक्षा करने वाले हैं, इनके चरणों में हमारी प्रीति, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लोग समझते हैं कि गायों को पालन करने में कुछ अधिक लाभ ने कम दूध देती है, नहीं, भैंसे सभी अधिक दूध देती हैं और बहुत सुख और गुणवती होता है, और साथ साथ में उसमें 56 करोड़ देवता लोग उसके रोम रोम में बास करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है ये, अब संस्कृति नष्ट होने जा रही है, तभी आज गिरिराज जी की कृपा है कि लाखों करोड़ों लोग इनकी परिक्रमा करते हैं। किस लिए करते हैं? जो कोई भी इनकी परिक्रमा करने के लिए, मन बहलाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, जिस रूप में भी यहाँ पर आकर के परिक्रमा करता है, गिरिराज जिसकी समस्त प्रकार की आकांक्षाओं को, कामनाओं को, मनोरथों का संपूर्ण रूप से पूर्ण कर देते हैं। यदि कोई ईंटा पर ईंट रख देना चार पांच, तो वो पांच महले मकान उसके हो जाएंगे। दस ईंट रख देना बैठने हैं रास्ते में, ईंट के ऊपर पर रखे हुए, किस लिए? हमारे पंच महला, दस महलाए, ग्यारह महलाए, 108 बम्बई में और कलकत्ते में, 108 महल के ये सब स्टोरियां सब है, तो उनके भी बन जाए। और जब ये देखेंगे कोई यहाँ आकर के एक पेड़ की लता को, डाल को उन्होंने जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या? दोनों को जोड़ करके गठबंधन होता है ना, तो वैसे हमारा भी गठबंधन हो जाए, वो भी पूर्ण कर देते हैं, धन धान्य पूरा कर देते हैं। वोट लेने वाले जितने होंगे ना, सब यहाँ आए होंगे गिरिराजी को, कहे होंगे जैसे गुरुराज जी, हम यदि उसमें सफल हो गए आपकी कृपा से, हम दूध की धार से परिक्रमा करेंगे, जरूर कहे होंगे। जितने भी यहाँ पर खड़े हैं निराश होंगे, वो जरूर करते होंगे। इस तरह से गोवर्धन जी सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और तब एक बात है, जो लोग कोई कामना नहीं करते उनके पीछे पीछे चलते हैं किसी न किसी रूप में, और यदि वो निकल जाती है भावना तो उसको पूरा कर दिया, और यदि नहीं निकालता, भीतर ही नहीं रखता है, तो जब तक कि वो प्रकाशित नहीं होता उसकी भावना, तब तक उसके पीछे चलते हैं। भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, वो लोग कोई भावना प्रकाशित नहीं करेंगे, इसके लिए गोवर्धन की राज को मुश्किल पड़ जाता है। वो क्या चाहते हैं अंतर में वो रखते हैं, हम राधा जी की पाल्यदासी हो जाए। यदि गिरिराज जी आप कृपा करते हैं, हमारा जीवन इसी में सार्थक हो जाएगा। इसलिए वो बतलाते नहीं, इसलिए गिरिराज जी उनके पीछे 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 अंत तक चलते हैं, और उसकी मानव भावना को भी वो पूर्ण कर देते हैं। किंतु ये देना बड़ा भारी कठिन है, इसके लिए कोटि कोटि कल्प तक तपस्या करने पर भी जो चीज मिलती है, वो गिरिराज जी क्षण मात्र में इच्छा करने से ही अपनी कृपा दृष्टि से उसको पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हम लोग गिरिराज जी के पास में हैं, यहाँ हम लोग आते हैं, आप लोग आए हुए हैं, आप लोग चलते 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 थक भी गए होंगे, भूख भी लग गए होगी, तो गिरिराज जी किसी भी सब व्यवस्था किए हुए अपने भक्त को बलबीर सिंह को यहाँ पर भेज दिया, और उनके परिवार वालों को जो जाओ भक्त लोग आ रहे हैं उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं रखना। गिरिराज जी का आज 56 भोग यहाँ पर लग रहा है, कढ़ी दाल, अन्न चावल, रोटी पूरी कचौड़ी, सब्जी इत्यादि, सब तरह की चीजें, मिठाइयाँ, सब ठाकुर जी को भोग लगी हैं। आप लोग यहाँ पर पैर भी धोने की कोई जरूरत नहीं है, पवित्रता की जरूरत नहीं, कृष्ण गोचारण करते हुए हाथों में दही और अन्न का कवल लेकर के और खाते चलते फिरते थे पैर धो, और हाथों को अपने सिर में या ऐसे बगल में पूछ लेते थे, इसलिए ये सब की कोई जरूरत नहीं है। गिरिराज जी के दर्शन से, इनकी धूली लगने से ही हम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर गिरिराज जी का प्रसाद देने के लिए बलबीर सिंह जी को, उनकी पत्नी को, उनको लड़कों को, उनके जमाई को, उनके सब जितने परिवार हैं, इष्ट मित्र जो यहाँ पर पधारे हैं, हो सकता है कि उनके संबंधी भी कोई आए हों, और सब लोग आए हैं, वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर सब सेवा करने के लिए आए हैं, उन सबसे सबके लिए मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग भी जी कष्ट करके परिक्रमा कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इसमें कष्ट नहीं, तो बड़े आनंद के साथ में आज गिरिराज जी ने हम लोगों के लिए छत्र छाया कर दी, कहीं धूप भी नहीं पड़ी, धूल भी नहीं हुई, बड़े आनंद के साथ में कीर्तन करते हुए सभी लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि बलदीप जी और उनके पारिवारिक लोग, उनके जो ये लोग हैं, सबके लिए वो कृपा करें कि उनको जो हम लोग इतना तपस्या करें, जो भक्ति हम लोगों को, वो भी भक्ति उन लोगों को और पारिवारिक जनों को दे, उनका जीवन भी कृतार्थ हो जाए। और ऐसे प्रति वर्ष वर्ष में जब हम लोग आए तो ऐसे ही प्रति वर्ष वो सेवा करें।
गौतमानंदे
आज यही कहा, अभी हम लोग आरती करेंगे,
आरती हो गई,
अभी आरती होगी, आरती दर्शन करके और अब हाथ मुख धोना चाहते हैं तो यहाँ पर कल इत्यादि है और बहुत विस्तृत यहाँ पर स्थान है। आप लोग लाइन दे करके एक तरफ में पुरुष लोग और एक तरफ में महिलाएं, अपना आधा में पुरुष लोग आधा में महिलाएं बैठ जाएं। यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी लोग सब बैठेंगे या वहाँ पर जहाँ पर जगह होगी, और आप लोगों को परिवेशन करने के लिए जरूरत है तो हमारे ब्रह्मचारी लोग सब प्रस्तुत हैं, हमको केवल खबर दे दें, हम लोग उनको भी लगा दें। बहुत प्रणाम। राधा कुंड के अंतर्गत राधा कुंज बिहारी गौड़िया मठ है। जब यहाँ पर मठ नहीं था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ के पासी में सूर्य कुंड में भजन करते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर आए थे। उस समय कंजड़ों का राज्य था, आना बड़ा कठिन काम था, लोग लूट लेते थे कंजड़ लोगों को। तो वो रहते थे सूर्य कुंड में, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ पर पधारे। 140 की 144 बरस की उम्र थी, बाबा जी महाराज जी की पलकें एकदम नीचे झुकी रहती थी, हाथ से उठाकर उसको बांध करके तब वो चलते थे, टोकरी में उनके शिष्य लोग ले जाया करते। इतने बड़े भारी विद्वान और सिद्ध महापुरुष थे कि अपने जैसे कि जीव गोस्वामी विश्व वैष्णव के राज्यसभा के प्रधान थे, ऐसे ही अपने समय में गौड़ मंडल, ब्रजमंडल और क्षेत्र मंडल तीनों स्थानों के एकदम सिद्ध महात्मा सबके असभ में मैंने सबके द्वारा ये पूजित और सभी इनका सम्मान करते थे, इसीलिए इनका नाम था वैष्णव सार्वभौम। भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ गए 144 वर्ष की उम्र में, अपनी साधना भाजना और अपना जो मूल भाव था राधा जी के प्रति, उनका जो भाव था भजन किसको कहते हैं, सब कुछ भक्ति विनोद ठाकुर में उन्होंने प्रतिफलित कर दिया। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी उनको भागवत परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के बाद ही भक्ति विनोद ठाकुर जी को उन्होंने ग्रहण किया। ये भागवत परंपरा साधारण लोगों को उनके समझ में नहीं आता है कि शिष्य परंपरा में और भागवत परंपरा में क्या अंतर है। बाबा जी लोगों के बुद्धि में नहीं है घुसता, वो लोग चाहे शिष्य जैसा भी हो, गुरु और शिष्य उसी की परंपरा में चलते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको ग्रहण नहीं किया, उन्होंने भागवत परंपरा सिद्ध परंपरा को उन्होंने ग्रहण किया। तो ये प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ आए, बाबा जी ने कहा आप थोड़ा सा यहाँ का रास्ता सुगम बनाइए, तो वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले मथुरा में, और उनके प्रभाव से प्रभावित होकर धीरे धीरे रास्ता बनाया और कंजड़ों को जेल में कुछ भरवा दिया। इसके बाद से लूटमार कम हो गई, रास्ता सुमग हो गया, अब यहाँ पर मठ मंदिर भी होने लगे। उसमें मठ मंदिर भी कुछ नहीं थे, सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर जी जिस समय आए थे यहाँ पास ही में भक्ति
स्वानंद
सुखद कुंज वहीं पर उन्होंने स्थापित की। ये राधा जी का अपना स्थान है राधा कुंड के अंदर में, उनकी भावना के द्वारा वहाँ पर स्थापित करके वहीं पर भजन किया। उनका भी खड़ा हूँ, उनका पलंग इत्यादि सब वहाँ पर, उनका चेयर था हम लोगों ने देखा था। अब वो आजकल है या नहीं, किंतु उनकी विचारधारा तो वहाँ है, ये तो आज न कल सब चली जाएंगे, किंतु उनकी विचारधारा कभी जगत से नहीं जाएगी। जिसमें प्रभुपाद जी परिक्रमा लेकर के यहाँ पर हजारों लोगों को लेकर के यहाँ पर आए, तो ये आस पास में सब तंबू लगा दिया गया हजारों। पूज्यपाद वन महाराज जी इसके कमांडर इन चीफ थे, वो परिक्रमा मार्ग ये सब करने का, उन्होंने यहाँ पर राधा कुंड को एकदम सजा दिया। उन्होंने राधा जी का कुंज ललिता विशाखा चित्रा चंपक लता तुंग विद्या और इंदुलेखा इत्यादि का रूपमंजरी का पास में जहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड मिलन होते हैं उसी पास में, इसी तरह से सबके कुंज उन्होंने बनाए तंबुओं के माध्यम से। उधर में सखाओं के कुंज बनाए और सखाओं ने अपना कुंज दे दिया सखियों को दे दिया। ये सब उन्होंने दिखलाया था, बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर किया था। प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर भाषण में इसी जगह कि मैं आया था कुछ
चैतन्य महाप्रभु के भावों को देने के लिए जिसके लिए वो आए थे। नर्सी चरण चिराग करुणी आवसुरी नकल समर्पित समुन्नतोज्वल सांसा भक्ति श्रियम हर ये पूर्व सुंदर दूत कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे पूर्व में सचिनंद। चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए थे? अनर्पित न अर्पित बहुत दिनों तक एक कल्प पहले जो चीज नहीं दी गई, जिसको कृष्ण ने नहीं दिया, रामचंद्र जी ने नहीं दिया, जिसको और किसी आचार्यों ने नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु वहां पर आकर के उन्होंने दिया। क्या दिया? अनर्पित चरण प्रेम। कौन सा प्रेम? इसमें कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है। उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्री, उन्नत उज्ज्वल रस नहीं देने के लिए आए। वो तो राधिका जी का एक चेटिया हुआ अधिकार है, उसमें राधा जी के भाव को आस्वादन करने के लिए आए। देने के लिए आया क्या? उसका श्री, उन्नत उज्ज्वल रस का श्री क्या है? वो मंजरी, जैसे कि लताओं में मंजरी होती है, मंजरी न रहे तो लता का कोई मूल्य नहीं। उस मंजरी के भाव को देने के लिए आए थे। ये चैतन्य महाप्रभु का देना था। ये उन्नत उज्ज्वल रस जो राधिका जी का भाव है, तो आस्वादन करने के लिए आए। यदि दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो देने की चीज ही नहीं है, वो राधा जी का अपना स्वभाव है। वो कैसे देंगे? वो मदनक्ष मोहनक्ष इत्यादि जो भाव है उसको दिया नहीं जाए। इसलिए उनके मंजरी स्वरूप, उनकी शोभा स्वरूप शोभा है वो मंजरी भाव। बस यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। प्रभुपाद जी कह रहे थे जब मैं उस चीज को देने के लिए जगत में आया, किंतु चारों तरफ में जंगल छड़ा हुआ है, कांटे और कूस और सब लगे हुए हैं, मैंने उसको साफ करना आरंभ किया, आज तक साफ करने में हुए लग गया। मैं साफ करने में सारा जीवन बिता दिया, मैंने वो प्रेम नहीं दे सका, किंतु यहाँ आकर के उनका मुख विवरण हो गया। राधा जी का स्मरण करते करते, उनके भावों को स्मरण करते करते, रूप मंजरी विशेष का, रूप मंजरी और रति मंजरी विशेष का वो भाव स्मरण करते करते प्रेम में गदगद हो गए, मुख विवरण हो गया, आंख से आंसुओं की धारा निकलने लगी और फिर वहीं पर चुप हो गया और कुछ आगे बोल ही नहीं सके, भाव में आविष्ट हो गए। वो स्थान पर हम लोग आए, पीछे से उन्होंने अपने किसी प्रिय शिष्य के नाम के ऊपर में इसका नाम क्या रख दिया?
कुंज बिहारी गौड़ी,
कुंज बिहारी, कुंज बिहारी ब्रह्मचारी, तो उन्होंने लेकर कर रख दिया कुंज बिहारी गौड़ी मत। हम लोग वहाँ पर आए हैं, प्रभुपाद की ये सब स्मृतियाँ यहाँ से जड़ित है, भक्ति विनोद ठाकुर की स्मृतियाँ जड़ित है। आज कुछ प्रभावशाली आचार्यों की आवश्यकता है, जो लोग गौड़ीय वैष्णवों के मतों को, विचार को, सरस्वती धारा को खंडन कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं कि उसमें क्या
परिवार प्रणाली,
सिद्ध प्रणाली इत्यादि दिखलाते हैं, वो सब गलत परंपरा है। सिद्ध प्रणाली तो एक है, त्रिनादपि सुने चन तरोरपि सुना, ये नहीं रहेगा तो वो सब लेकर के जो आया, जिसको टट्टी का पानी नहीं साफ करने आता और उनको सिद्ध मंत्र गोपी मंत्र देंगे, वो क्या करेंगे? जगत के जंजाल बन जाते हैं। इसलिए इसकी रोकथाम होने की जरूरत है। प्रभुपाद ने ही सबकी शिक्षा दी। आप लोग तनिक भी विचलित मत अपने विचारों से होंगे, उसमें परिपक्व रहेंगे। प्रभुपाद जी से विचार बढ़ करके दुनिया में, जगत में कोई आने नहीं दिया। रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, पीछे से हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, बलदेव विद्याभूषण ने, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दो धारा प्रवाहित की, वो अब कभी बंद नहीं होने वाली है। इसलिए आप लोग न डरने की जरूरत है, न संकोचित होने की जरूरत है, खूब साहस के साथ में प्रभुपाद की धारा पुल आप लोग रहेंगे, उनमें जाकर के मिल करके उनके विचारों को सुन करके अपने को सहजियाना बना देंगे, नहीं तो आप लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए खूब अच्छी तरह से प्रभुपाद के विचार को, धारा को लेकर के चले, भगवान का भजन करें, यही प्रभुपाद की सर्वोत्तम सेवा होगी। गौर प्रमाण। ये पहले आप लोगों ने देखा श्री चंद चरितामृत को प्रकाश करने वाले श्री लक्ष्मीदास कविराज गोस्वामी का भजन कुटीर है, यहीं पर रह करके और वो भजन भी करते थे और यहीं पर लिखते भी थे। अभी हाँ यहीं पर लिखा गया, और यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, वहाँ पर अभी जो देख करके आए वो समाधि है, और यहीं पर भजन करते थे। यहाँ पर एकदम कोई कूटी फूटी कुछ नहीं थी, उस समय जंगल था, बाघ आकर के यहाँ से पानी पीते थे और यहीं पर बैठे रहते थे। सनातन गोस्वामी जी ने उनसे कहा, जैसे अरे भाई तुम्हारे लिए हम कुटी पर्ण कुटी बना देते हैं, तुम यहाँ रह करके भजन करो, और नहीं तो ये बाघ इत्यादि हिंसक जानवर है, न जाने क्या कर दें। तो उन्होंने अपने हाथों से पर्ण कुटीर बनाई
और उनको वहां पर दे दिया, तब से यहां पर ये भजन करते थे। ये ऐसा स्थान है। यहां पर पांचों पांडव लोग अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर और द्रौपदी ये छह यहां पर भजन करते थे। उनका ये पेड़ है, पेड़ अब तो अंतर ध्यान हो गया, किंतु वहां पर पेड़ थे नीम पीपल पाकुर बरगद और दो एक पेड़ थे।
नीम था, नीम भी अंतर ध्यान,
तो ये सब धीरे धीरे अंतर ध्यान हो रहे हैं। पांचों पांडव लोगों को लोभ था कि हम लोग द्वारका लीला में तो प्रवेश कुछ हम लोगों का हुआ, किंतु हम लोगों का प्रवेश कृष्ण के ब्रजलीला में नहीं हुआ, इसलिए यदि यहाँ पर हम भजन करें और राधा जी कृपा करें हमारे ऊपर में, तो हम ब्रजलीला में भी हम कुछ हमारा अधिकार हो जाए, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए ये भजन करते। रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ रहते थे तो एक बहुत बड़ा भारी सेठ बद्री नारायण में गया, तो बद्री नारायण में गया तो वो सेठ उनकी सेवा करना चाहता था। उन्होंने कहा जैसे तुम जाओ राधा कुंड में जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी विरक्त ये वैष्णव है उनके पास में जाकर के कहो, वो कुछ सेवा में लगा देंगे, राधा कुंड को वो प्रकाश करना चाहते हैं। जब वहां पर आए और मोहरों की थैली उनके सामने रख दी तो हाय हाय करने लगे, ये हमारे अंदर में ऐसी लालसा क्यों जगी, मैं प्रतिष्ठा चाहता, राधा कुंड तो शास्त्र में चीन में है, हम उनको फिर से उद्धार करना चाहते हैं, अपने को धिक्कार करने लगे। फिर वो उनका नाम लेता हुआ आया, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन है, बद्रीनारायण ने हमको आदेश दिया है, यह सरफियां उनको दे दें और ये राधा कुंड श्याम कुंड का उन्हों वो फिर से पुनरुद्धार करें। उन्होंने कहा जब मैं नहीं करा था, रात में फिर बद्रीनारायण ने इनको स्वप्न दिया कि तुम राधा और कृष्ण की स्मृति के लिए साधारण लोगों के लिए भी तुम इसको अच्छी तरह से उद्धार करो, तब उनके कहने से ले लिया। राधा जी तो सीधी है, समानांतर चार कोण और चार भुजाओं वाला वो तो प्रकाश कुंड हो गया, उसमें कंकन कुंड इत्यादि सब प्रकाशित हो गए और अथवा पानी उसमें, किंतु यहाँ का कुंड जबकि बनाने लगे तो पेड़ जो पांचों थे